एक बहुत ही खूबसूरत आयत जो हकीकत में दुनिया की हकीकत को खोल के रख देती है। फरमाया, ए लमो, जान लो, इल्म हासिल करो, सोचो, गौर करो, आंखें खोल के देखो। क्या? अन्नमल हयातु दुनिया, बेशक दुनिया की जिंदगी, ये दुनिया जो हम गुजार रहे हैं, इस जिंदगी की हकीकत क्या है? लाइबुन, खेल है, प्ले, लाइब को कहते हैं, मलअब कहते हैं प्ले ग्राउंड को अरबी में, जहाँ खेला जाता है, और लाइब खिलाड़ी को कहते हैं। ये दुनिया एक खेल है, और क्या है? वलहवन और तमाशा। लव कहते हैं हर वो चीज़ जो बंदे को मकसद से गाफिल कर दे, लहवल हदीस का लफ्ज़ आता है, हर वो चीज़ जो इंसान को अपने अंदर मगन कर ले, जिसके बाद किसी की होश न रहे। और क्या है जिंदगी? व तफाखुरुम बैनकुम, और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर फख्र करना। फाखारा इसका रूट है, उर्दू में भी बोलते हैं ना, फख्र फट पड़ने के मानों में आता है। कल फखार का लफ्ज़ पीछे गुजर चुका, यानी थोड़े कप छोट किसी को तंग कपड़े पहना दिए जाए ना, जिस्म भारी हो और कपड़े तंग हो, तो होता क्या है कि या तो कपड़ा फट जाता है या उसका जिस्म फिर कपड़ों में से फट फट पड़ता है। ये वो शख्स है कि जिसका ज़र्फ़ बहुत थोड़ा था, छोटे ज़र्फ़ का था, अल्लाह ने उसको थोड़ी दौलत दे दी, बजाय इसके कि उसको अल्लाह ही को राज़ी करने के लिए इस्तेमाल करता, वो उसी दौलत की वजह से फूलने लगा, अकड़ने लगा, तकब्बुर करने लगा। आपस में एक दूसरे पर फख्र, हसब पे, नसब पे, माल पे, जहाँ बैठे गाड़ियों की बातें, कपड़ों की बातें, कंटेनरों की बातें, डॉलर्स की बातें, यानी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि लोग कहें कि वाह, इससे बड़ा तो कोई रईस ही नहीं। और चौथी चीज़, व तकासुरुम फिल अमवाली वल औलाद, और माल और औलाद के ऊपर एक दूसरे पर कसरत हासिल करना। तकासुर कसरा से है, कसरत का लफ्ज़ इसी से है। अल्हाकुमुत तकासुर में भी यही लफ्ज़ है, गफलत में डाला तुमको कसरत की हवस ने। यहाँ तक बात करके दुनिया की ज़िंदगी को चार खानों में डाल दिया। क्या? पहले ज़िंदगी लाइब लगती है। अब देखिए कि हमारी ज़िंदगी के यही चार मरहले होते हैं। सबसे पहले बचपन होता है, उसमें खेल बड़ा अच्छा लगता है, खाना खाते हुए भी खेल रहे हैं, माँ कपड़े पहना रही है और वो खेलने लग जाते हैं, माँ कहती शावर में चले जाओ और वो पानी से छप छप खेल रहे हैं, खेल अच्छा लगता है ना बचपन में। ये अलग बात है कि आप बड़ों को भी खेल ही अच्छे लगते हैं, लेकिन देखा जाए तो खेल बच्चों का काम होता है। फिर बंदा थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी 11-12 साल की उम्र शुरू हो गई, जवानी आने लगी, अब इसमें ज़िंदगी में लहू आने लगता है, और वो क्या होता है? इधर उधर की बातें, लड़के हैं तो उनको लड़कियों के ख्वाब आने लगते हैं, और लड़के हैं तो उनको लड़कियों के आते हैं, बेकार चीज़ें, रोमांटिसिज्म अच्छा लगने लगता है, इंसान ऐसे सॉन्ग सुनना पसंद करने लगता है कि जिससे वो ख्वाबों की दुनिया में चला जाए, हकीकत अच्छी नहीं लगती, और इंसान लहू का आदी हो जाता है, वक्त की कदर नहीं रहती, बेकार मशगलों में पैसे खर्च करते हैं, माँ बाप से हर वक्त रोना धोना यह है कि मेरा पॉकेट मनी कम है, मेरी पूरी नहीं पड़ती, और माल खर्च करने में इंसान का दिल जो है वो बहुत खुला होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 15, 16, 17 साल की उम्र आ जाती है तो जीनत शुरू हो जाती है। अमूमन इस दौर में शादी की तैयारियां होती हैं, अब हर लम्हे जीनत, लड़की है तो उसको सजने संवरने का शौक़ है, कपड़े बनाने का शौक़ है, जेवरात का शौक़ है, शादी है तो कमरा कैसा सजेगा, दुल्हन क्या पहनेगी, जेवर कैसे होंगे, बर्तनों का शौक, औरतों को अमूमन फिर इस दौर में हर चीज़ सजाने का शौक आता है, घर को सजाना, संवारना, और जीनत जीनत जीनत। इसमें आप समझे कि 10 साल गुजर जाते हैं, 16-17 से लेके आप लगा ले 26-27, चले 30 साल की उम्र तक, हर लम्हे जीनत का शौक है, हर चीज़ में खूबसूरती चाहिए, खूबसूरती खूबसूरती। फिर जब बंदा 30 से ऊपर जाता है ना, अब जरा होश आता है, पांव जमीन को लगते हैं, कहाँ उड़ रहे थे, वापस आ जाए, कमर जरा सी झुकने लगती है, इतनी में से 30s में तो अब नहीं होता मेरा ख्याल है, आप परेशान ना हो। हाँ, कुछ भी हो, हर मुल्क का फर्क भी होता है और इलाके का फर्क है, लेकिन आने वाला हर दिन जो है ना, जब जिस्मानी कमजोरियां आती हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ गई और एंटी रिंकल क्रीमें ईजाद हो गई, बालों को डाई कर लो और रोज सुबह उठ के देखते हैं कितने हो गए हैं, फिर इसको डाई करें, वो कहते हैं हमने सफेद होना है, हम कहते हैं हम काला करेंगे, इसी झगड़े में इंसान की जिंदगी का वो दौर आ जाता है कि तफाखुरुम बैनकुम, फिर फख्र। अमूमन देखिए इस दौर के खासतौर पे मर्द जो फारिग हो जाते हैं ना, का फिर वो बैठ के ही आप मेरा फलां पोता ऐसा, मेरे बेटा ऐसा, हमारे इतने कारोबार, हमारा इतना बिजनेस, यानी ये जो 30s 40s का बिटवीन टाइम होता है ना, इसमें अमूमन तबीयत में फख्र आ जाता है। देखते हैं कि मैं अपने खानदान के कितने लोगों से ज्यादा दौलतमंद हूँ, फला दूसरे भाइयों की निस्बत मेरा कारोबार कम है कि ज्यादा है, और इस तरह फख्र फख्र। और अक्सर माएं भी इस दौर में अपने बच्चों पर फख्र कर रही होती हैं, क्योंकि बच्चे भी छोटे होते हैं ना, थोड़े अच्छे ही होते हैं। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि जब बंदा बिल्कुल कमजोर हो जाता है, अब उसके अंदर वो ताकत नहीं कि इतने घंटे काम करे। अब ये जो दौर होता है ना 40s 50s, यानी इसके बाद फिर ऑनवर्ड लगा ले, जिसमें बंदा खुद कमजोर हो जाता है, कमा नहीं सकता, तो फिर जो असरात आते हैं ना, वो क्या है कि इंसान के दिल में माल की मोहब्बत बढ़ जाती है, इसीलिए इस उम्र में लोग माल खर्च करने में थोड़े कंजूस हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अब हम कमा नहीं सकेंगे, हर दिन हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ताकत कम हो रही है, और खौफ कह के बुढ़ापा आ रहा है, लाशौर में होती है ये चीज। लेकिन इस दौर में लोग बतकासुरुम फिल अमवाली वल औलाद बढ़ाना चाहते हैं, जमा करने की आदत हो जाती है, क्योंकि अब आगे थोड़ी अंधेरे की रातें आ रही हैं, तारीकी के दिन है, और इस तरीके से इंसान इतना माल जमा कर ले, बुखल कर ले, कोई भी काम कर ले, अल्लाह के रास्ते में दे ना दे, लेकिन फिर आगे जाने का वक्त आ जाता है, सब कुछ छोड़ के आगे जाना पड़ता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आओ देखो तुम्हारी जिंदगी की मिसाल क्या है। अब आयत के अगले हिस्से में टैली करेंगे, मिसाल दी है अल्लाह ने एक चीज जिसके साथ दुनिया की जिंदगी का रब देखेंगे। फरमाया का मसली मानित मिसाल गईसिन बारिश, गईस कहते हैं उस बादल को या बारिश को जो बड़ी दुआओं के बाद बरसे। आ जबल कुफार जो अच्छा लगता है किसान को, यानी जब फसल एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है कि पानी देने की बात भी पानी की जरूरत होती है ताकि फसल उगे, तो किसान आसमान की तरफ नजरें लगाता है कि कब यहाँ से बादल उठे और बरसे और मेरी खेती बढ़े। तो ऐसा गईस, ऐसी बारिश जो आसमान से उतरी और इसको देखकर किसान को खुशी हुई। यहाँ किसान के लिए लफ्ज़ कुफार आया है, और कुफार का लफ्ज़ काफिर से है, छुपाने को कहते हैं, काफिर के दिलों में अल्लाह का और आखिरत का इनकार छुपा होता है ना, इसलिए उसको काफिर कहते हैं। और किसान को या काश्तकार को काफिर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी बीज को जमीन में दबा देते हैं, रूट एक ही है लेकिन मानी फर्क है। तो क्या होता है कि किसान उस बारिश को देख के खुश होता है, बारिश आई किसान खुश हुआ, क्या अच्छी लगती है उसको, नबात हु अपनी खेती, नबातात यानी जो खेती उसने लगाई थी, जो ही बारिश बरसी उस किसान खुश हो गया, उसने कहा देखना अब कितनी सरसब्जी होगी और फसल पकेगी। लेकिन फिर क्या होता है, तुम यही जो फिर यकायक वो सूखने लगती है, वो जो फसल बारिश के साथ हरी हुई थी कुछ दिन के बाद वो भुरभुरी होने लगती है, और एक वक्त आता है कि फतराहु मुसफर्रन, तुम देखते हो कि उसका तो रंग ही जर्द हो गया, यानी वो सब्ज पत्ते अब भूरे होने लगे, भूसी में बदल गए, और एक वक्त आता है कि वो सब्ज पत्ता जो दरख्त पे था वो हवाओं के साथ जमीन पे गिरा, और तुम यकून होतामा फिर रेजा रेजा हो गया, चलने वालों के कदमों में गिरता है, कदम ऊपर आते हैं तो वो चूरा चूरा होता है, और पीछे हम पढ़ चुके सूरह कहफ में कि हवाएं उसको लेके फिर उड़ती फिरती हैं। ये है जिंदगी, एक फसल लगी, चंद दिन सरसब्जी रही, किसान उसको देख के खुश हुआ, और साथ ही बुढ़ापा आ गया, रंग पीला पड़ने लगा, और उसके बाद तो बुढ़ापा आया कि इंसान चूरा चूरा हो जाता है, सारा हुस्न गया, कोई खूबसूरती नहीं रहती बूढ़ों के पास, इंसान इसी गिल्ट में मारा जाता है कि हाय जवानी में मैं ऐसा लगता था। तस्वीरें अपनी छुपा छुपा के रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये आपकी तस्वीरें हैं, और ये वो जिंदगी है जो अल्लाह की याद के बगैर थी। दुनिया में तो हाल ये हुआ, वफिल आखिरत अजाबन शदीद, और आखिरत में या तो अजाब शदीद है, यानी इस जिंदगी की कीमत नहीं पहचानी, इसको जाया कर दिया, इन्हीं चार चीजों में लग के गुजार दिया, या फिर वह मग़फ़िरत मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से बख्शिश है। कुछ गुनाह हुए थे, आखिरी जिंदगी में तौबा की तौफीक मिल गई, अल्लाह से माफी मांगी, उसने माफ कर दी, फिर इतनी नेकियां की कि वह रिज़वानुन, और उसकी रजामंदी भी मिल गई। दो इंजाम हैं इस मौत के बाद, या तो अजाबुन शदीद, और इसके मुकाबले में, अजाब के मुकाबले में इनाम नहीं कहा, मगफरत क्यों कहा, कि गुनाह फिर भी होते हैं, ये लग पाता है कि अल्लाह उनको माफ कर दे और उसकी कोशिशों की वजह से राजी हो जाए। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर सिर्फ एक धोखा। सच बात है ना सच, और सच हो क्यों ना, क्योंकि अल्लाह की बात है। और वमन अस्दक मिन अल्लाह ही हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन होगा। अगर हमें ये बात समझ आ जाए ना, तो हमारे गम खत्म हो जाए पहली बात, और दूसरी बात हमारी मस्ती उतर जाए। गम क्यों खत्म हो जाए, क्योंकि दुनिया में दुखी थे, क्या जरूरत है दुखी होने की, 4 दिन की दुनिया। जैसे दुनिया छोटी है और खत्म होने वाली है, इसी तरह इसके गम भी खत्म हो जाएंगे। मैं क्यों गमजदा हूँ, ये तो रहना ही नहीं हमेशा। जैसे किसी स्टेज ड्रामे में काम करते हुए किसी को कोई सदमा पहुंचे, तो क्या वो दुखी होगा उस पर, उसको पता है ये 3 घंटे का खेल है, उतरूंगा तो ये गम खत्म। और किसी का स्टेज ड्रामे में, मतलब किसी के बाप का इंतकाल हो, और वहां से उतरने के बाद लोग उससे के बड़ा अफसोस हुआ आपके बाप का इंतकाल हुआ, तो कहेगा क्या मतलब है मेरे बाप का, क्या वो तो खेल था। याद रखिए, ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में एक ऐसा ही खेल है। यहाँ अल्लाह ताला ने इसको लाइव से तबीर किया ना, खेल से, स्टेज ड्रामा है। शेक्सपियर का कॉल है ना, दुनिया एक स्टेज है, लोग आते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं और चले जाते हैं, और आखिर में कुछ भी नहीं रहता। ये जो दुनिया के हमारे रिश्ते हैं ना, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा शौहर, भाई, बच्चे, ये हमारे असली रिश्ते नहीं। ये शौहर असली नहीं है, ये बच्चे असली नहीं है, ये माँ असली नहीं है। क्यों? कि अगर ये असली होते ना, तो हमें छोड़ के ना जाते, पहली बात। और दूसरी बात ये है, इसलिए ये असली नहीं है कि हम में से किसी को यकीन नहीं है कि हमें अगली दुनिया में यही रिश्ते मिलेंगे, यही शौहर मिलेंगे। नहीं, वहाँ फैसले होंगे ईमान की बुनियाद पे। अगर वहाँ यही मिलने हैं ना, अगर दुनिया में हम दोनों नेकी पे हैं, तो फिर इंशाल्लाह ये असली होंगे। दुनिया में माँ मरती है, गम ना करें, ये आपकी असली माँ ही नहीं है। कल क़यामत के दिन ये माँ आपसे बिल्कुल बेन्याज होगी, अगर आप उसकी तरह नेकियों वाली ज़िंदगी नहीं बसर करेंगे। वो बाप शक्ल देखने को तैयार नहीं होंगे जिनको आप याद करके रो रहे हैं, अगर आपने उन बापों के नक्शे कदम पे अपने आप को नेकियों पे नहीं रखा। असल रिश्ते क़यामत के दिन जुड़ेंगे। अल्लाह ताला नेक औरतों को नेक शौहर देगा, नेक मर्दों को नेक बीवियाँ देगा, जिनकी औलादें जहन्नुम का कूड़ा बन गई, अल्लाह उनको वह नए बच्चे दे देगा, और जिनके भाई बहन आग में जहन्नुम में चले गए, अल्लाह वहाँ नए रिश्ते दे देगा। सिर्फ वही नकली रिश्ते असली में बदलेंगे जो नेकियों पे होंगे। इसलिए ये दुनिया ना दिल लगाने की जगह है, ना इसके ऊपर फरिश्ता होनी चाहिए, ना इसको संवारते संवारते अपनी आखिरत खराब करनी चाहिए। इसके गम आए, बर्दाश्त कर लें। इसको संवारने के लिए अल्लाह के कानूनों को तोड़ना, गद्दारी करना, नाफरमानियाँ करना, ये घाटे का सौदा है, ये कम अकली की बात है। कोई एक स्टेज ड्रामे में अपने आप को कामयाब करने के लिए अपनी टांग तुड़वा ले, आप अक्लमंद कहेंगे? बस लोग पिक्चराइजेशन के दौरान जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो सीन बड़ा रियलिस्टिक देना था। पता चला पहाड़ से पाँव फिसला, टांग जख्मी हो गई, खेल तो ख़त्म, वो जख्मी टांग उनके साथ रहेगी, बेवकूफ़ी है ना। इसी तरह इस दुनिया के लिए अपने आप को आखिरत में हैंडीकैप करना, ये बेवकूफ़ी है। जिसने ये सोच लिया ना कि मुझे वहाँ अच्छा बनना है, उसको यहाँ का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की एक रिवायत का खुलासा है कि जिसने अपनी दुनिया बनाई, उसकी आखिरत ज़रूर कुछ ना कुछ बिगड़ेगी, क्योंकि एक तो ये होता है कि हराम हलाल के फर्क से बनी, और दूसरी बात है कि दुनिया बन जाती है तो अल्लाह भूल जाता है, इल्ला माशाल्लाह। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी दुनिया भी अच्छी होती है और आखिरत भी अच्छी होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चार किस्म के लोग हैं। एक वो जो दुनिया के एतबार से खुशकिस्मत है, सब कुछ मिल गया लेकिन नाफरमानी है, अकल नहीं है बस, बाकी सब कुछ है। नतीजा क्या हुआ? आखिरत में बुरा अंजाम। दूसरे वो लोग हैं जिनकी दुनिया बड़ी खराब है, दुख तकलीफें आजमाइशें, लेकिन अकल है, ईमान है, हर बात पे कहते हैं रजी तो बिल्लाह रब्बन, शुक्र करते हैं, अल्लाह की रजा पे राजी रहते हैं। ऐसे लोगों की आखिरत बड़ी प्यारी है। ये हैं दो किस्में। तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो दुनिया में भी दुखी थे, गरीब बेकार, कुछ भी नहीं, मुश्किलात में आजमाइशों में, लेकिन दीन भी नहीं था, अकल ही नहीं थी। अक्सर अनपढ़ लोग इस तरह के होते हैं। आप देखिए कि बस लोग गुर्बत के मारे होते हैं, घरों में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बचे खुचे खा रहे हैं, लेकिन साथ चोरियों की आदत है, नमाज नहीं पढ़ते, शिर्क करते हैं, कब्रों पे जाते हैं, यानी ना दुनिया अच्छी और बदले में आखिरत भी अच्छी नहीं, क्योंकि वो काम ही नहीं किया जो करना था। और चौथी किस्म का एक गिरोह है जिनकी दुनिया बड़ी अच्छी है, अल्लाह ने माल औलाद सुकून खुशी इत्मीनान सब दिया है, लेकिन साथ अकल भी दी है, समझ भी दी है, अल्लाह के दिए हुए को उसी की तरफ लौटा देते हैं, ज़रूरत का रखते हैं बाकी अल्लाह को दे देते हैं, वो अल्लाह की दुनिया को एंजॉय भी करते हैं। ऐसे लोगों की आखिरत भी अच्छी है और अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल कर दे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने ये दुआ सिखाई जो कुरान पाक में भी है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अक्सिना आक़िबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्य दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ए अल्लाह, हमारा इंजाम अच्छा कर दे सारे कामों में, और हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा और दुनिया की रसवाई से बचा। यकीन करें यहाँ से तो बस आफियत के साथ गुजर जाएं, कपड़े लपेट लपाट के अपने आप को बस इस तरह से इस दुनिया के समंदर में से बगैर पांव गीले किए गुजार लें कि वहाँ मुतमईन हो जाएं। वरना याद रखिए, खिलौना खिलौना ही होता है, कितना भी कीमती हो जाए है तो वो खिलौना ही ना। आप अपने बच्चे को 10 रुपए का भी खिलौना दिला दें, वो भी टूट जाएगा, उसने आते ही उसको तोड़ना शुरू कर देना है। और आप उस बच्चे को 10,000 का खिलौना खरीद दें, जरा नजर आप बचाएं थोड़ी देर में, देखें तोड़ के बैठा होगा, खोल के देखेगा इसमें क्या है। तो खिलौने सस्ते ही अच्छे हैं, इस जिंदगी के खिलौने कम से कम कीमत पे खरीद लें, और जो एक्स्ट्रा मनी बचे ना उसको आगे जमा करवा दें। और अगर आपने कीमती खिलौने खरीदे ना तो आदतें बिगड़ जाएंगी। जो माँ बाप अपने बच्चों की आदतें बिगाड़ देते हैं ना, फिर वो सारी जिंदगी कम पे राजी नहीं होते। इसी तरह अगर दुनिया में हम बहुत पांव पसार के भी रहे ना, बड़ा सा घर बना लिया, कौन नहीं बना सकता, मुश्किल है? बहुत आसान है। कौन अपने आप को बेहतरीन गाड़ियों में खड़ा नहीं कर सकता? कर सकता है। और अल्लाह अगर देता है और कोई करता है तो गुनाह भी नहीं है, याद रखिए गुनाह नहीं है। आपको अल्लाह ने दिया, आप हलाल से कमाते हैं, अल्लाह का हक भी देते हैं, सदका ज़कात भी देते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये आपकी चॉइस है। गुनाह नहीं है, हिसाब है, और हिसाब और गुनाह बहुत फर्क चीज है। जरूरी नहीं कि हिसाब हो और फिर अजाब भी हो, और अगर हिसाब ही को समझ लें तो अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब गुरबा दौलतमंदों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। दो लोग एक ही दिन पैदा हों या एक ही वक्त में मुसलमान हों, एक जैसी नेकियां करें, मिसाल है, एक ही नीयत, एक ही इखलास, एक ही जमात नमाज, और उनमें से एक दौलतमंद हो, नेमतों में हो, और दूसरा नफातुल्ला रिस्क पाए, और दोनों एक ही दिन फौत हो, इस हदीस की रोशनी में ये दोनों जन्नत में जाएंगे, लेकिन कम दौलत वाला या गुर्बत वाला दूसरे से 500 साल पहले जाएगा। क्यों? ये वहां अपनी कुर्सियां मेज तुलवा रहा होगा, हिसाब दे रहा होगा। और इसको समझ लेना, तो आप एक दिन एयरपोर्ट पे चले जाएं और एक वो लाइन देख लें जिसमें लगेज के बगैर लोग जाते हैं, अपना ब्रीफ केस लिया और बोर्डिंग पास लिया और चल पड़े। और दूसरा वो है जो अपने एक उतारता और एक चढ़ाता है, इधर का सामान उधर उधर का इधर, ये भी तलवार है और इसकी फ्लाइट निकल सकती है, लेकिन वो आगे चला गया। यही बात है, जितना तैयारी कर सकते हैं करें, जो हिसाब दे सकता है वो जरूर ले, कोई हर्ज नहीं है, गुनाह बिल्कुल नहीं है, और ना इसको अल्लाह ताला ने कोई बुरा कहा है। हाँ, बुरा तब हो जाता है जब इस्लाम की कीमत पे हो, हराम से हो, या इस्लाम को जरूरत है और उसके बावजूद हम लगे हुए इन कामों में। जब इब्तदाई दिन थे तो बड़ी सख्ती थी सहाबा के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक जगह से गुजरे तो आपने देखा कि एक शख्स का एक कमरा था, उसने उसके ऊपर एक और कमरा डाल रहा है जिसको आप डबल स्टोरी कह लें। तो आपने पूछा ये इसने क्या किया, नागवारी से देखा कि इस्लाम को इतनी जरूरत है, अभी इस्लाम बिल्कुल सांस ले रहा है, अभी तो पता नहीं कितने दुश्मन पीछे लगे हैं और ये कमरे पे दूसरा कमरा डाल रहा है, बस कुछ नहीं कहा चले गए। जब वो शख्स आया तो जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कह दिया कि अल्लाह के नबी आए थे, उन्होंने जरा नागवारी का इजहार किया कि भाई ये क्या याशी है, हो सकता है किसी के पास एक कमरा भी नहीं और तुम दूसरा डाल के बैठ गए हो। बस ये बात बर्दाश्त नहीं कि अल्लाह के नबी ने इसको पसंद नहीं किया, खुदा लेके उसको गिराना शुरू कर दिया। यानी ये मिसालें मिलती हैं, ये हालात के मुताबिक होंगी। अब ये नहीं कि आप सारे अपनी डबल स्टोरी खत्म कर दें, ये मतलब नहीं है इसका। असल बात ये है कि हम ये डबल स्टोरीज ना भी छोड़े ना, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना है कि हम अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं। तो बात यह है कि जिसको ये हकीकत समझ आ जाएगी उसके लिए फिर अमल करना जरा भी मुश्किल नहीं रहेगा। और वरना याद रखे कि दुनिया जितनी ज्यादा होती है ना उतनी कम हो जाती है, माल जितना ज्यादा होता है ना उतना आपका दिल घुटता है। आपके पर्स में पैसे है ना, परवाह भी नहीं, आप खर्च करते रहेंगे, जिस दिन बैठ के आप गिन लेंगे ना उस दिन आपका हाथ खींचेगा, 99 का चक्कर चल पड़ेगा, इसमें 10 और हो जाए ना तो 1,000 कर लो। ये नहीं कहते इसमें से चलो 400 दे के 500 का नोट पक्का कर लो, हमेशा इंसान आगे बढ़ना चाहता है, माल जमा करना उसकी फितरत में है।